ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम देना और उसे देश के विकास से जोड़कर हर परिवार को समृद्ध बनाना सहकारिता आंदोलन से ही संभव है। केंद्र के प्रयासों और सहकारी आंदोलन को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने के कारण पिछले 3 वर्षों में सहकारी क्षेत्र में तेजी आई है। श्री शाह ने कल पुणे में जनता सहकारी बैंक के प्लैटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश के सहकारिता क्षेत्र को नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि देशभर के सहकारी बैंकों को वित्तीय कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का गठन किया गया है और ये संगठन सभी सहकारी बैंकों को मजबूत करने का काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे पहले पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश, बिहार और असम की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी भोपाल में 2 दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर जाएंगे और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। वे बिहार में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा विशेषाधिकार नहीं बल्कि मौलिक अधिकार है। कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जोर देकर कहा कि ग्लोबल साउथ के देश अनिश्चित आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक अर्थव्यवस्था की अनिश्चितताओं के बंधक नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में करोड़ों नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। ये सत्र 3 दिन तक चलने का प्रस्ताव है। सत्र के पहले दिन सदन के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। सत्र के दूसरे दिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना विधानसभा को संबोधित करेंगे और पिछली सरकार के कामकाज से जुड़ी CAG रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। श्री लवली नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जम्मू और कश्मीर के मंडा क्षेत्र में कल शाम एक बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद सवारियों को दिल्ली ले जा रही बस जैसे ही जम्मू के बाहरी इलाके में मंडा के पास एक मोड़ पर पहुंची, ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया। 17 लोगों को खाई से बाहर निकाला गया और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया जहां एक घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। सभी घायल यात्रियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हादसे पर शोक जताते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए कल रियासी जिले में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने पर रियासी जिले की महोर तहसील के सिमली शाजरू इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया जिसमें हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ। मणिपुर में चूड़ा चांदपुर जिले के जोमी और कुकी समुदाय ने सुरक्षा बलों को 16 हथियार और गोला बारूद सौंपा है। इससे पहले मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बृहस्पतिवार को सभी समुदाय के सदस्यों से पुलिस के लूटे गए हथियारों और अवैध हथियारों को 7 दिन के भीतर जमा कराने की अपील की थी। राजभवन से जारी एक अपील में कहा गया था कि यदि हथियार जमा नहीं किए जाते तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।